जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवद गीता की जय, गौर माता की जय, श्री श्री राधा श्री रामचंद्र की जय। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी धन पर ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे हरि बोल एवरीवन, हरे हरि बोल, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता की। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपने आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज के वर्ष स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं, ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनके इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में अपना कर खुश रह सके, है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली यह आरंभ कर चुके हैं। चैप्टर 2 में भगवद गीता का कंटेंट कैसे चलने वाला है उसको एक क्विक रिव्यू है। चैप्टर 2 भगवद गीता का सार है, निचोड़ है। भगवान अब हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको। 13 वर्स हमने समझा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस श्लोक में देखो हमें भगवान बता रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना, फिर हम मिडल एज में आते हैं और फिर हम ओल्ड एज में चलते जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली कौन बदल रहा है? हमारा शरीर बदल रहा है ना। मतलब भगवान हमें बता रहे हैं कि जब तुम छोटे बच्चे थे तब भी तुम एक आत्मा थे, फिर जब तुम मिडल एज में आ गए तब भी तुम वही आत्मा हो, और जब शरीर हमारा वृद्धावस्था में आ जाता है, मान लो 90 ईयर्स 100 ईयर्स का हो जाएगा, तब भी आत्मा वैसी ही रहने वाली। मतलब शरीर बदल रहा है हमारा, प्रतिक्षण बदलता है शरीर, कभी भी हमारा एक रूप रहता नहीं है। मतलब आप ध्यान से सोचो ना, तो शरीर हमारा जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहे, और वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तब जो शरीर के मरने का क्रम है ना, ये परिवर्तन हमारा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब हम पैदा होते हैं, बाल्यावस्था आती है ना, बाल्यावस्था मर जाती है तो फिर युवावस्था आ जाती है ना, युवावस्था मर जाती है तो फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था आ जाने पर देहांतर, मतलब शरीर की मृत्यु हो जाती है, मतलब दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है एक आत्मा को, है ना। तो ये सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं है, शरीर की है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये तीन अवस्थाएं हमारे स्थूल शरीर की है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो एनर्जी है, वो वैसे ही रहती है, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। शरीर की एक्सपायरी डेट होती है, और जब वो एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसको देहांत कहते हैं, और उस समय पर एज आत्मा जो भी हमने किया हुआ है, जो भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर रूपी पेन ड्राइव, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार में सेव हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें अगले शरीर मिलते हैं, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति की आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, क्योंकि अगले जन्म एक आत्मा को शरीर मिलना तय होता है फ्रेंड्स, चाहे वे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें भीष्म, द्रोण या अपने रिलेटिव्स के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये सब लोग अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह उनको नई शक्ति प्राप्त होगी, है ना। तो ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के सुख या दुख भोगते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि भगवान ने हमें मृत्यु का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, और सबसे पहले भगवान हमें मृत्यु के बारे में ही ज्ञान दे रहे हैं। तो उसमें हमने ये समझा था, क्योंकि हम सब ना बदलाव से डरते हैं फ्रेंड्स, और परिवर्तन संसार का नियम है, ये एक सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सबसे ज्यादा हम लाइफ में चेंजेस आती है ना, तो उससे हम घबराते हैं, हम एक छोटी की बातें बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे कि घर बदलना है ना, ट्रांसफर होगी तो हमें दूसरे शहर में जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, मैरिज के बाद दूसरे के घर में जाना है लड़कियों को, है ना। तो इन बदलाव से भी घबराते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन तो हम फ्रेंड्स हम लोगों के साथ यही होने वाला है कि हम भी एक दिन शरीर छोड़ देंगे और हमारे लव्ड वंस भी शरीर छोड़ देंगे। हम सब ने शरीर छोड़ना है। तो अगर हमने इस पॉइंट को समझ लिया, मतलब कम से कम थ्योरी में तो हम चीजें समझने लगे, है ना, ठीक है। प्रैक्टिकल इसको समझना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, बोलना बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, है ना। लेकिन इस सच को कोई झुठला नहीं सकता ना, और इस सच को कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी बात ही नहीं करना चाहता इसके बारे में, है ना। तो भगवान हमें यहीं से हमें ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले हमें साइंस ऑफ सोल के बारे में समझा रहे हैं, है ना। तो अगर हमने इस पॉइंट को समझ लिया फ्रेंड्स, तो मृत्यु के भय को अगर हमने जीत लिया, मान लो ये भय 100 kg का है ना, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है ना। अगर किसी ने 100 kg उठाने की तैयारी कर ली तो उसको फिर 10-20 किलो कितने लगेंगे, इजी लगेंगे ना उसको। जब उसको मतलब छोटी मोटी डिफिकल्टी आएगी लाइफ में, स्ट्रगल्स आएंगे छोटे मोटे, तो उसको इजी लगेंगे ना कि यार शरीर ही हमने छोड़ देना है, चले ही जाना है, तो किस चीज का हम अहंकार कर रहे हैं, किस चीज की हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, है ना। तो दुनिया के कोई भी स्ट्रेसेस चैलेंजेस फिर बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे हेल्थ इश्यूज आ जाए, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज आ जाए, तो फिर हमें वो आसान लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ डेथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव से हम सब डरते हैं, डिफिकल्टीज से, प्रॉब्लम से हम सब घबराते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होने वाला है, हम सबके साथ होने वाला है। कई लव्ड वंस हमारे छोड़ के जा चुके हैं और आगे हम भी चले जाएंगे, तो एक दिन हमें शरीर छोड़ना ही पड़ता है फ्रेंड्स, और हम सबको छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि यार ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं तो क्या हम सब घर बार छोड़ दें, क्या हम अटैचमेंट्स ना रखें, है ना। तो ऐसे लोग वो होते हैं फ्रेंड्स जो चीजों को गहराई से नहीं समझते, है ना, जिनको छोटी छोटी बातों में उलझे रहने में मजा आता है, है ना। बातों को नहीं समझेंगे, उनको लगता है नेगेटिव बातें हो रही हैं, है ना। लेकिन इसको हम अगर गहराई से इन चीजों को समझे कि अगर हमने मृत्यु के भय को ही जीत लिया अगर, तो हमें फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं ना। हमेशा माइंड में यही रहेगा यार हमने तो शरीर ही छोड़ देना है, अभी ठीक है लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो हमने शरीर छोड़ना है उस प्रॉब्लम से तो ये कम ही प्रॉब्लम है ना, है ना। तो चीजों को डील करने की हमें सेंस आ जाती है, हम फिर जब चीजों को फिर जब शांत मन से डील करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा चांसेस है ना कि हम एक्चुअली ठीक ढंग से उन चीजों को डील कर पाएंगे और उसमें फिर विजय भी हो पाएंगे। ऐसा क्या होता है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हम बस हाय तोबा मचा देते हैं, वैसे तो 99% हमें प्रॉब्लम होती नहीं है, हमने बनाई होती अपने मन की प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहला भगवद गीता पढ़ के हम पहले तो मन की प्रॉब्लम से हमें निकलना फ्रेंड्स, है ना। फिर जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आती भी हैं, बड़े मुश्किल से मैं देखा कि कोई 4-5 प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो उनको हम अच्छे से समझ के डील कर सकते हैं। फिर तो कई लोगों का क्या लगता है कि क्या हम फिर घर बार छोड़ दे, हम घर में ना रहे। तो फ्रेंड्स चीजों को हमें, भगवद गीता को हमें गहराई से समझना है। कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं और कई लोगों को हमने सुना भी होता है अपने आसपास की, यार मेरे से नहीं संभलता ये घर गृहस्थी, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, मैं कैसे अपनी ड्यूटीज को संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो वृंदावन चली जाऊंगी या हरिद्वार चली जाऊंगी, है ना। ऐसे बहुत लोगों को हमने सुना होता है ना कि जंगल में जाकर भक्ति करना आसान है, है ना। लेकिन अगर आप चले भी गए, मान लो, है ना, कोई चले भी जाता है तो वहां पे भी अगर हम अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना, तो क्या मुक्ति मिलेगी हमें। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा भाव से परिवार में रहते हुए सबके साथ प्रेम भाव से रहोगे, है ना, सबके साथ एथिकली परफॉर्म करोगे, है ना, जॉब पर जाते हुए अगर आप बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया गाड़ी से ऑफिस में जाते हो, लेकिन आप मन से प्रभु का स्मरण कर रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि मेरा तो कुछ नहीं है, जो भी है प्रभु का है, ये प्रभु ने मुझे गाड़ी दी है, महंगे महंगे कपड़े दिए हैं, ये सब प्रभु ने दिए हैं मुझे, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रभु के सेवा भाव से सारे कार्य करने। फ्रेंड्स देखो, अब जिनको 2-3 साल हो गए हैं तो वो तो समझ चुके हैं कि भाई एक्चुअली मन ही हमारे बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण ना। तो ये कहीं नहीं बोला गया है कि परिवार बंधन का कारण है या नौकरी बंधन का कारण है ना। भगवान पूरी भगवद गीता हम पढ़ लेंगे, 18 अध्याय पढ़ लेंगे, कहीं भी भगवान ने हमें ये नहीं बताया है कि तुम अर्जुन को कभी कहीं नहीं समझा रहे हैं कि तुम ये सब युद्ध वगैरह छोड़ दो, तुम्हें जरूरत नहीं है युद्ध करने की, तुम ऐसा करो जंगलों में चले जाओ और वहां पे मेरी भक्ति करो, कहीं भी भगवान ये नहीं समझा रहे हैं। भगवान तो उसको कर्तव्य का ज्ञान दे रहे हैं ना, अर्जुन जो मोह में आ चुका है ना, तो भगवान अर्जुन जी को बार बार अपने कर्तव्य को कैसे परफॉर्म करना है, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, कोई भी कार्य मैं कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और यही राइट है इस टाइम में जो ये कार्य करना, है ना। अपने कर्तव्य को छोड़ना धर्म नहीं है, भगवान ने कहीं नहीं समझाया कि तुम भक्ति करने चले जाओ, तुम जाओ मेरी माला करो, जंगलों में चले जाओ, ये युद्ध तो मैं देख लूंगा, ऐसे कहा भगवान ने। भगवान ने तो शस्त्र ही नहीं उठाया था पूरे महाभारत युद्ध में, है ना। तो मन ही है जो हमें फालतू चीजों में फंसाता है फ्रेंड्स। एक्चुअली मैंने तो यही देखा कि हमें ज्ञान नहीं होता, राइट चीजें पता नहीं होती है, अपने स्क्रिप्चर्स हमने पढ़े नहीं होते। तो थ्योरेटिकल लेवल पर हमें समझना है फ्रेंड्स कि प्रभु ने हमें बताया कि मैं एक सोल हूँ। अगर हम अपने आप को खाली शरीर मानते हैं, है ना, तो फिर हम अपना फायदा नुकसान देखते हैं। लेकिन जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, मेरी लाइफ में सुख आ रहे हैं या मेरी लाइफ में दुख आ रहे हैं, वो संभाव में रहती है, है ना। तो मैं तो आत्मा हूँ और मुझे क्या करना है, मेरा काम है अपने जो भी भगवान ने मुझे असाइन ड्यूटीज दी हैं, मुझे उनको भक्ति भाव से करना है, है ना। भगवान से कनेक्शन बढ़ाना है, हरि नाम करना है, भगवान को खुश करने वाले कार्य करने हैं। क्योंकि अगर हम भगवान को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, है ना। हम करते हैं उल्टा है, हमें क्या लगता है कि भगवान हमें खुश करेंगे, लेकिन करना क्या है, भगवान को खुश करने वाले कार्य करने हैं हमने, ऐसे कार्य करने हैं जिससे भगवान खुश हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए, है ना। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो लाइफ हमारी सिंपल हो जाएगी, बहुत ही सिंपल लाइफ। और हमें क्या लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीजें होंगी तब लाइफ हमारी बहुत खुशहाल होगी, है ना। भगवान ने कहा है कि भाई सिंपल लाइफ है और तुम इसको एथिकली परफॉर्म करो, सिंपल बात, है ना। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़े कि जो भी कार्य करने हैं प्रभु को खुश करने वाले कार्य करने, ऐसा कोई कार्य नहीं करना मुझे जिससे भगवान नाराज हो जाए, है ना, तो लाइफ हमारी सिंपल और खुशहाल हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरी बोल, 14 श्लोक पढ़ना हमने। हरी बोल।
हरी हरी बोल। अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। हे कुंती सुत, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है और समय के साथ वह चला भी जाता है। हे भारत, ये सब इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वह क्षणिक है, अतः तुम इसको स्थिरता से सहन करने का प्रयत्न करो। श्लोक नंबर 14। हे कुंती सुत, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है और समय के साथ वह चला भी जाता है। हे भारत, ये सब इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वह क्षणिक है, अतः तुम इसको स्थिरता से सहन करने का प्रयत्न करो। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण हमें मैसेज दे रहे हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है ना, ये भी एक सिद्धांत है ना कि सर्दी ने आना है और फिर उसके बाद गर्मी ने आना है, गर्मी आती है तो फिर सर्दी ने आना है, तो ये रिपीट होता रहता है ये साइकिल, है ना। तो भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है वैसे ही सुख और दुख आते हैं। तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि भाई जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तब तक सुख के फेजेस भी आएंगे और दुख के फेजेस भी आएंगे। तो अब भगवान हमें यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो भी हमें ये सुख और दुख के फेजेस आते हैं ना, ये सब हम सब की सेंस परसेप्शन है, ये सब हमारे इंद्रिय बोध है, है ना। ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान कह रहे हैं, है ना। सेंस परसेप्शन, इंद्रिय बोध क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे लग रहा है कि आज उसने मुझे ऐसा कहा तो वो मुझे टोंट मार रही थी, उसने मुझे वो कहा तो उसका मूड आज अच्छा था, वो मेरी तारीफ कर रही थी, है ना। तो हम ये जो शब्द होते हैं ना, जो हम लगना लगना कहते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण होते हैं फ्रेंड्स कि किसको क्या लग रहा है। कई बार हमने मन में पिक्चर्स बना ली होती है, कल्पनाएं कर ली होती है, हमने कल्पनाएं की होती है ना कि ये जो 10-15 कोल्ड मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं और जो बाकी सारी दुनिया मेरी दुश्मन है। हम क्या करते हैं, अपनी जो फ्रेंड है ना उसका दुश्मन हमें दुश्मन लगने लग जाता है, जो वो बातें हम सुनते रहते हैं अपने रिलेटिव्स की या अपने फ्रेंड्स की, है ना। जो उनके एनिमी होंगे वैसी बातें सुनते सुनते रहने से हम चाहे उनसे मिले ना हो, लेकिन हमने मन में ही एक पिक्चर बना ली होती है, एक इमेजिनेशन बना ली होती है कि वो मेरे दुश्मन है। ऐसे ही मन में हमने कल्पनाएं कर ली होती है फ्रेंड्स कि ये मुझे पसंद नहीं करता या वो मुझे पसंद नहीं करता, है ना। चाहे दूसरे व्यक्ति की इंटेंशन ही कुछ और हो, बट हमारे दिमाग में ना कुछ चलता रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। चाहे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो लगता है कि इससे बुरा ही कुछ नहीं किया इसने मेरे साथ, है ना। होता है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, मान लो घर में मैंने खाना बनाया, है ना, सिंपल राजमा चावल मान लो मैंने बनाया, तो मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटों ने खाना खाया, तो मेरे बड़े बेटे को राजमा चावल बहुत अच्छे लगे, लेकिन छोटे बेटे को राजमा चावल खाए उसको अच्छे नहीं लगे, है ना। तो उसने क्या कहा, मम्मा इसमें नमक ज्यादा है, मिर्ची बहुत कम है, है ना। तो मेरे बड़े बेटे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे बेटे को खाना अच्छा नहीं लगा। तो क्या है ये, है ना, उसकी जो इंद्रिय है, उसकी जो टंग है, उसने क्या बताया उसको कि भाई खाना अच्छा है, और दूसरे बेटे को बताया ये खाना अच्छा नहीं है। बनाया तो मैंने, एक व्यक्ति ने, लेकिन दोनों का उसको लेने का ढंग अलग अलग था। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखो मान लो एक लड़का है ना, एक बच्चा है जो बचपन से ही फर्स्ट आता था, ये मैंने आपको कल भी बताया था शायद एग्जाम्पल, है ना। तो उसने टारगेट बना रखा था कि मुझे कभी भी सेकंड नहीं आना, और जब वो 10th क्लास में पहुंचता है तो उसको 1% नंबर कम आ जाते हैं, है ना। तो वो फर्स्ट नहीं आता इस बार, जो बचपन से फर्स्ट आ रहा था तो इस बार वो फर्स्ट नहीं आता है, वो सेकंड जाता है ना। मतलब हमेशा उसके 99% नंबर आते थे, तो इस बार उसके 98% नंबर आ गए, है ना। तो एक और बच्चा है, बचपन से ही उसके 50% नंबर आते थे, लेकिन अब उसने मेहनत की और उसने सोचा कि नहीं 10th क्लास तो बहुत बड़ी क्लास हो गया, मुझे मेहनत करनी है, तो अब उसके 70% नंबर आ गए। तो खुश किसको होना चाहिए, है ना। तो हमारे हिसाब से तो खुश 98% वाले बच्चे को होना चाहिए था, और 70% वाले बच्चे को तो दुखी होना चाहिए था, है ना। लेकिन इंद्रिय बोध होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन बना ली होती है हम लोगों ने, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो इंद्रिय हैं, वो बताती है कि भाई तू फेल हो गया है। उस बच्चे को ये बताएगी जिसका 98% नंबर है, उसको क्या लगेगा यार, मतलब मेरे इतने नंबर कम आ गए, मैं सेकंड कैसे आ सकता हूं? है ना। तो वो जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारा मन है, उसको क्या बोलेगा यार, तू कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। तो सोच सोच के कई बार हम सुनते हैं ना कि 10th में या प्लस 2 में बच्चे ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो मतलब इतने डिप्रेस हो जाते हैं हम लोग, हमारे सिर्फ एक 2 मिनट के उस सेंस परसेप्शन से। तो इतना हाई लेवल का ये इंद्रिय बोध होता है फ्रेंड्स। और दूसरी सिचुएशन में देखो कि दूसरा बच्चा 70% लेकर बहुत खुश है, और जो पहला बच्चा है 98% लेकर वो अपने आप को फेलियर मान रहा है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास ही होते हैं, है ना, कहीं दूर थोड़ी होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, और हम भी ऐसा करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हमें, कुछ हमारे मन का हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब हमारे मन का नहीं हो तो हमारे से दुखी कोई नहीं होता। तो यहाँ पे जो सर्दी और गर्मी वर्ड है ना फ्रेंड्स, इनका मतलब है अनुकूलता और प्रतिकूलता, है ना। मतलब इसको सर्दी गर्मी को सुख और दुख के साथ भी कंपेयर किया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, ज्यादा सर्दी पड़ जाए अगर तब भी एक वृक्ष सूख जाता है, और ज्यादा गर्मी पड़ जाए तब भी एक वृक्ष सूख जाता है ना। इसलिए सर्दी और गर्मी दोनों ही एक जैसे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान हमें इन दोनों को सहने की आज्ञा दे रहे हैं, इनसे ऊपर उठने की आज्ञा दे रहे हैं, सुख दुख से ऊपर उठने की आज्ञा दे रहे हैं हमें इस श्लोक में। मतलब जिंदगी में सुख क्या है, दुख क्या है फ्रेंड, ये उस इंसान के इंद्रियों का दृष्टिकोण है ना। कई बार हमने देखा हुआ है कि कई लोग फिजिकली बहुत वीक होते हैं, वेल्थ वाइज भी वीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में पॉजिटिविटी है ना। इसलिए जिंदगी में हैप्पीनेस को अनुभव कर सकते हैं वो लोग। और कई बार लोगों के पास हेल्थ भी अच्छी होती है ना, और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं छोटी छोटी बातों से, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मन से दुखी होते हैं एक्चुअली वो, है ना। यानी कि जो उनकी इंद्रियां हैं वो नेगेटिव ही देखती रहती हैं हर वक्त। हम भी ऐसा करते थे, और हमारे आसपास के लोग तो हम अब देख पाते हैं ना, हम तो ऐसा करना अब थोड़ा सा परसेंटेज में देखे तो कम हो गए हैं, क्योंकि हम नित्य निरंतर ये चीजें पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुसती रहती है तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने देखा आपको हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवद गीता एक बार पढ़ ली, हमने पढ़ ली 2 बार 3 बार हो गया। इसको नित्य निरंतर अपने मन में अपने अंदर ये चीजें होनी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। ब्रश क्या हम एक ही बार करते हैं, खाना क्या हम एक ही बार खाते हैं, सांसें क्या हम एक ही बार लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें अपने स्क्रिप्चर्स बार बार पढ़ने चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन, या जो अपने स्क्रिप्चर्स और भी हम पढ़ सकते हैं, अपने उपनिषद हैं, भागवतम है, तो हम इनको पढ़ना चाहिए, है ना। तो ज्यादातर लोग फ्रेंड्स अपने नेगेटिव फेज में रहते हैं, और नेगेटिव ही लाइफ उनकी चल रही होती है ना। तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि वही सुख और दुख से ऊपर आना है, सुख और दुख को सहना है, डिस्टर्ब नहीं हो जाना। जनरली हम क्या करते हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, सिचुएशंस आएं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि बस ये तो लास्ट है, इसके बाद दुख तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा ही सोचते हैं ना। जब लाइफ कंफर्टेबल चल रही हो तो हमें क्या लगता है कि बस खत्म, यहाँ अब इसके आगे कुछ फेज नहीं आने वाला है लाइफ में, हम सोचना ही नहीं चाहते, और इस चक्कर में हम फिर घमंडी हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी तो हम सुख में लगा देते हैं, कुछ करते ही नहीं अच्छा, सारी एनर्जी सुख में लगा देते हैं हम उस वक्त, जब हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, फाइनेंशियली भी हम साउंड है, फिर हेल्थ वाइज भी हमारे अच्छा चल रहा है, फैमिली वाइज भी हम बेटर चल रहे होते हैं, उस वक्त हम बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते हैं फ्रेंड्स, सारी एनर्जी हम उस वक्त पूरी वेस्ट कर देते हैं उस सुख को भोगने के लिए, और फिर जब लाइफ में दुख आते हैं और दुख को भोगने की हमें कोई शक्ति नहीं रहती है, फिर हम क्या होते हैं, हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार, है ना। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं सिंपल शब्दों में कि भाई सहन करना सीखो सुख दुख को, इनसे ऊपर उठना सीखो, सुख में ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है और दुख में ज्यादा डिप्रेस नहीं हो जाना है। ये टाइम निकल जाएगा। जो सुख के फेजेस आ रहे हैं वो भी स्थाई नहीं है, और जो दुख के फेजेस आ रहे हैं वो भी स्थाई नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं सिंपल बात है, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे कर्म करना, सिंपल। बार बार पूरी भगवद गीता में हमें यही बात सीखने को मिलती है कि हमारे हाथ में क्या है, अपनी ड्यूटीज को स्टेबल रहकर परफॉर्म करना, है ना। तो जितना ज्यादा हम स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा हम शांति की तरफ, खुशी की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखो, एक व्यक्ति जितना ज्यादा अटैच हो जाता है ना इस बात से कि मेरी लाइफ में हमेशा सुखी रहे, हमेशा मैं कंफर्टेबल रहूं, तो उसी व्यक्ति को फ्रेंड ज्यादा दुख आता है लाइफ में। जिसको हमेशा लगता है ना कि मेरी लाइफ बस मैं स्वर्ग में ही रहूं, हमेशा हमेशा मैं सुखी रहूं, मैं डिजर्व करती हूं कि हमेशा सुखी रहूं, है ना। कईयों को तो ऐसा मानना होता है कि मैं डिजर्व करती हूं हमेशा सुखी रहूं, है ना, और उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख आते हैं फ्रेंड्स। और एक व्यक्ति अगर शांत होकर सोचे कि कोई बात नहीं है, जो हो रहा है वो है, कोई मेरे पास्ट कर्मास, ये टाइम भी तो निकल ही जाएगा ना, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम। अब जो सुख का टाइम मेरा नहीं रहा तो ये दुख का टाइम कैसे रह जाएगा, है ना। तो कई बार मुझे लाइफ में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। कोई लाइफ में बिटर एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, तो भाई मुझे ये लर्निंग्स लेनी है कि या कुछ तो मैं गलती कर रही हूँ, है ना, समझना है ना कि कुछ तो मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर रही हूँ कि मुझे लाइफ में दुख आ रहे हैं, है ना। और फिर सोचना है कि मैं इसको बेटर कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में फ्रेंड्स ध्यान देना है। दूसरों की लाइफ में, दूसरों की फैमिली लाइफ में नहीं हमें घुसना है, हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है, अपनी फैमिली को कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं धीरे धीरे लेकर जाऊं। पहले हम बेटर होंगे तब हम अपनी फैमिली को भी कुछ समझा सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो रोने की जगह अगर हम अपना समय अपने आप को बेहतर बनाने में लगाते हैं, अपनी एनर्जी को और अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से करेंगे, तो हमारी लाइफ ने बेटर होना ही होना है ना। जब हम अपना समय लगाएंगे, अपनी एनर्जी को लगाएंगे अपने आप को इम्प्रूव करने में, है ना, जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने में, अपनी ड्यूटीज को बेस्ट वे में करेंगे, तो लाइफ ने तो इम्प्रूव होना ही होना। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरी बोल।
हरे हरी बोल। श्लोक नंबर 15। ए श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, वीर पुरुष जो सुख और दुख में समान रहता है और डगमगाता नहीं, वे अवश्य मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है। हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, वीर पुरुष जो सुख और दुख में समान रहता है और डगमगाता नहीं, वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है। हरी हरी बोल।
थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें भगवान ना मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान हमें समझा रहे हैं कि भाई मुक्ति के योग्य कौन है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मुक्ति शब्द आते ही कि ये सब जो वर्ड होते हैं, मुक्ति है, मोक्ष है, ये कुछ शरीर छोड़ने के बाद की बात है। लेकिन देखो, पहले हमने इस जीवन के बारे में समझना है ना, मृत्यु के बाद का क्या जीवन है, क्या मुक्ति, क्या मोक्ष की बात है ना, इसमें नहीं जाएंगे हम। देखो, फाइनल एग्जाम तो साल के एंड में ही आता है, लेकिन रोज की पढ़ाई और फाइनल एग्जाम जुड़ी हुई बातें है ना। फाइनल एग्जाम तो लास्ट में आता है ना, ईयर एंड में, साल के एंड में आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, रोज की पढ़ाई। रोज की पढ़ाई होगी तो फाइनल एग्जाम अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो रोज की मुक्ति क्या है, हमारी बुरी आदतों से मुक्ति, नेगेटिव क्वालिटीज से मुक्ति, डेमोनिक क्वालिटीज से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, ईर्ष्याओं से मुक्ति, कंपैरिजन से मुक्ति, हमारे भय से मुक्ति। आपके पास मान लो, या मेरे पास मान लो, चिंता का संस्कार है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, है ना। मान लो एक नेगेटिव क्वालिटी को पकड़ते हैं, चिंता की बात पकड़ लेते हैं ना, कि मान लो मैं बहुत चिंता करती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में रहती हूँ, तो मेरी लाइफ कब बेटर होगी, जब मैं उस चिंता के साथ जीवन जीऊंगी या मैं उस चिंता को जब छोड़ दूंगी, जब मैं उस चिंता के संस्कार को ओवरकम कर लूंगी तब मेरी लाइफ बेटर होगी फ्रेंड्स, है ना। चाहे वो संस्कार फिर चिंता का हो, चाहे वो कोई गुस्से का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है ना, कोई भी, जो हमें पता होता है हमारे अंदर कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं फ्रेंड्स, है ना। हर किसी को पता होता है कौन कौन सी हमारी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। तो मेरी लाइफ कब कंफर्टेबल हो जाएगी, जब मैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दूंगी, जब मेरी मुक्ति हो जाएगी इस संस्कार से, तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी ना। मैं प्रेजेंट में रहना जब शुरू कर दूंगी, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, प्रेजेंट में रहना। हम हमेशा पूरी लाइफ पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में क्या हो गया उसके बारे में सोचते रहेंगे, और फ्यूचर में जो हुआ नहीं है पता नहीं क्या होने वाला है उसके बारे में सोचते रहेंगे, है ना। तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी जब मैं चिंता करनी बंद कर दूंगी, गुस्सा करना बंद कर दूंगी, ईर्ष्या करना बंद कर दूंगी, वाणी की तपस्या मैं अगर करूंगी, है ना। अभी क्या करते हैं हम, जो मन में आता है वो बातें करते हैं, जो मनगढ़ंत हमारे अंदर होता है वही हम बाहर निकालते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 10 साल पहले मुझे क्या कहा था किसी ने, उसी के बंधन में हम फंसे हुए हैं। तो उन विचारों को, उन थॉट्स को अगर हम त्यागना शुरू कर देते हैं तो वो मुक्ति होती है ना। और फिर फाइनल मुक्ति, फाइनल पेपर क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्रव्यूह से निकलकर जब हम भगवान के घर चले जाते हैं, है ना। तो भगवान ने स्टार्ट में ही कह दिया है कि अब ये मत सोचना कि तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे दूंगा कि तुम्हें दुख नहीं मिलेंगे। अगर आप में से भी कई लोग इसलिए जुड़े हैं कि शायद मेरी लाइफ के दुख कम हो जाएंगे तब मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। तब तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि मेरे लाइफ के दुख खत्म हो जाएंगे अगर मैं भगवत गीता पढ़ लूंगी, कभी नहीं होने वाला ये। चाहे हम कितनी धाम यात्रा कर लें, चाहे हम कितना ही भगवान के पास जाएं, या हम कितने ही अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से इतना जरूर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी आप जहां पे हो ना, अब अच्छे से देख लो, जिनकी फर्स्ट रीडिंग है, अब अपने आप को अच्छे से देख लो, आप अभी कहां पे हो। जब आप भगवत गीता की पूरी रीडिंग सिंसियरिटी से डेली आप करोगे और जो बताया जा रहा है उसको आप नित्य निरंतर प्रैक्टिस करोगे, जो अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बताई जाती है, अगर आप वो कर रहे हो और साथ में भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आपको नेक्स्ट लेवल में ना लेके जाए। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, है ना। अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है आपको वो आ जाएगा, अपने सुख और दुख में कैसे मुझे संभाव रहना है हमें वो आ जाता है। फिर हमें जो बहुत ज्यादा सुख भी आ जाए ना तो इतना वो एक्साइटेड नहीं करते, और जब बहुत ज्यादा दुख भी आ जाए तो वो इतना ज्यादा हम डिप्रेस नहीं हो जाते, है ना। तो भगवान सिंपल कह रहे हैं कि भाई भगवत गीता इसलिए मत पढ़ो कि तुम सोचो कि तुम्हें दुख नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। अभी हम मान लो हम नए नए स्टूडेंट हैं भगवत गीता के, और लाइफ में मान लो 2-3 महीने बाद कुछ दुख आ जाता है ना, तो हम भगवान को कोसने लग जाएंगे कि यार मैं तो, भगवान जी देखो मैं तो आपकी भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ, मैं तो आपकी पूजा पाठ भी करती हूँ, इसलिए हम कोसते हैं ना कि मैं तो आपके पास रोज आती हूँ, रोज आपको प्रसाद भी चढ़ाती हूँ, भोग भी लगाती हूँ, फिर भी आप मुझे दुख देते हो। जो भी दुख आते हैं हमारे लाइफ में तो हम क्या सोचते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, या फिर हम भगवान को जिम्मेदार समझते हैं। अपने पे हमारा कोई फोकस नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर लेना चाहिए, शायद मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है शायद मेरी वजह से ही है, शायद मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल ही होगा, सब कुछ फेवरेबल ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। भगवान ने क्लियर बताया है 14 श्लोक में कि जैसे सर्दी गर्मी आती है ना, उसी प्रकार सुख दुख भी आएगा। सबको कह रहे हैं ना भगवान के जीवन में भी आए हैं सुख और दुख। 13 ईयर्स के बाद भगवान ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, है ना, कभी अपने फ्रेंड्स को उनके साथ दोबारा नहीं खेले। 13 साल के बाद जब भगवान की 13 साल की उम्र थी, 13 ईयर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद से भगवान की लाइफ में दुख ही दुख मतलब युद्ध ही युद्ध, मतलब हमें दुख लग रहे हैं वो, लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने तो अपनी पूरी जीवन हंसते हुए व्यतीत किया है, हमारे तरह रोते हुए थोड़ी व्यतीत किया है भगवान ने। जो भी स्ट्रगल्स आई है भगवान ने हंसते हुए सही है वो सारी प्रॉब्लम्स, और हमें बताया कि भाई लाइफ ऐसे जी जाती है ना। पढ़ो ना भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कैसे उनका जीवन था, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, पूरा जीवन उनका युद्धों में बीता है फ्रेंड्स। चाहे भगवान श्री राम का ले लो या फिर आप भगवान श्री कृष्ण का ले लो, और हमें घर के कंफर्टेबल वातावरण में एसी में रहकर भी हम जो 2-4 माला करते हैं, हमें लगता है बहुत डिफिकल्टी है, हमें माला करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है, हम कर नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे होते हैं हम फ्रेंड्स, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देखो और भगवान की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे कंपेयर करो, अर्जुन की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कंपेयर करो अपना जीवन, फिर समझ आएगा कि भगवान ने हमें कितना कंफर्टेबल लाइफ दी हुई है, फिर भी हमें रोना है। फिर भगवान भी कहते हैं तथास्तु कि तुम बस हमेशा दुखी रहोगी, जो पॉजिटिव रहते हैं जो खुश रहते हैं भगवान उनको भी तथास्तु कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहोगी, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, भगवान हमें समझा रहे हैं कि तुम इन सुख दुख से ऊपर उठो, कहना सीखो, जो अटैचमेंट रखता है ना कि मैं हमेशा सुखी रहूंगी और मुझे दुख तो आएगा ही नहीं लाइफ। भगवान कह रहे हैं कि भी जो सुख और दुख के बाहरी स्वभाव को समझकर उससे विचलित होना बंद कर ले, है ना, मतलब जिसने ये आर्ट समझ लिया कि जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे सुख और दुख आएगा, और ये समझ जाए कि दुनियादारी के इस जीवन में सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, तो सबको आएंगे, तो हमें करना क्या है, जो भी हमें ड्यूटीज असाइंड है सिंपल हमें उसको भक्ति भाव से करना और समझना है कि जो ठीक है ना, सुख भी नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, या अभी लाइफ में ये वाला फेज तो ये भी चला जाएगा ना। तो यही अटके रहते हैं फ्रेंड 99% लोग, है ना। तो भगवान चाहते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शन है, भगवान की आज्ञा है कि भगवान कह रहे हैं कि चाहे सुख आए या दुख आए हम संभाव मेंटेन करके चले, है ना। संभाव मतलब जीवन में बड़ा सुख आ गया है ना, लाइफ में कंफर्ट्स बढ़ गए, बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, प्रमोशन मिल गई, फिर भी आप सत्संग साधना सेवा सदाचार कर रहे हो, है ना, लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, फिर भी धन्यवाद भगवान का, फिर भी आप सत्संग का आनंद ले रहे हो, भगवान की बातों का आनंद ले रहे हो, तब भी साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सदाचार ला रहे हो जीवन में, आत्म सुधार कर रहे हो, समाज सुधार पर भी ध्यान देते हो, है ना। लेकिन अब जीवन में मान लो दूसरी परिस्थिति आ गई, है ना, कंफर्ट जो लाइफ में है वो कम होने शुरू हो गए, घाटा हो गया बिजनेस में, मान लो लॉस हुआ, या लाइफ में कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गए, फिर भी क्या कर रहे हैं, फिर भी सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सदाचार का जीवन अपना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने समझ लिया कि ये तो लाइफ है, ये ड्रामा है लाइफ का, ये तो चलते ही रहना है। जैसे सर्दी में हम खाना खाते हैं तो गर्मी में भी खाना खाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आज बहुत गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा होता है कभी, है ना। तो जब आपने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को हरि नाम का खाना खिलाना चाहिए, उसको सत्संग साधना सेवा सदाचार का जीवन जीना चाहिए, तो वो इस पर लगातार फिर चलता रहता है ना। और जो ये कर लेगा, सुख दुख को उसने अगर समझ लिया, तो वो मतलब संभाव में आ गया, और जो ज्ञान है ना वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को। करना क्या हमें, हमें बस चलते रहना है, है ना। क्योंकि अगर सुख आ जाता है ना, हम सब भूल जाते हैं, वो माया का अटैक होता है फ्रेंड्स हम पे, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर जीरो से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, है ना। तो हमें क्या सोचना है, हमें बस लाइफ का ये रूल बना लेना है, मतलब लाइफ का एक सिद्धांत बना लेना है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सत्संग सुनना ही सुनना, साधना करनी करनी है, माला करनी है, भोग लगाना है, भोग लगा के ही खाना, खुद भी खाना है, बच्चों को भी देना, भोग लगाना है, है ना, आरती करनी है, भगवत गीता और अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, सेवा जो मैं कर सकती हूँ, है ना, समाज कल्याण में जो थोड़ा बहुत जो भी मैं योगदान कर सकती हूँ वो मुझे करते रहना है, है ना, और सदाचार का जीवन जीना है। कुछ भी लाइफ हो, चाहे लाइफ में फेवरेबल कंडीशंस हो या अनफेवरेबल सिचुएशंस हो, हमें हमेशा सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में चलना है। तो अंदर एक रूल बना लेना, मन में एक दृढ़ विश्वास कर लेना है, एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे डेली सत्संग सुनना है, है ना, अपने साधना पे फोकस करना है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे बताई जाती है मुझे कम से कम एक घंटा अपने लिए निकालना है, है ना। तो जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना वो आपको समझ ही नहीं आएगा, वो आप जियोगे उसको, है ना। एक तो होता है ना ज्ञान मिल गया, ठीक है, ज्ञान मिल गया, भगवद गीता हमने देखा होता है, बहुत लोग बोलते हैं हमने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, लेकिन फिर वो भटक जाते हैं रास्ते से, है ना। लेकिन फिर क्या हो जाता है, उस ज्ञान पर जीने की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो चीजें छूटना मुश्किल हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे फिर एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, लाइफ बेटर होना शुरू हो जाती है। तो सत्संग साधना सेवा सदाचार को हमें रेगुलर रखना है अपने जीवन में, सिंपल तरीका है संभाव में रहने का, है ना। प्रहलाद जी के जीवन से समझो कि क्या होता है संभाव, उनके पिता राक्षस थे ना, हिरण्यकश्यप सांपों के बीच छोड़ देते थे उनको, प्रहलाद जी महाराज को खाई में फेंक देते थे, है ना। वो क्या कहते थे कि भाई तुम मानो कि मैं भगवान हूँ, है ना। उनकी अपनी बुआ ने प्रहलाद जी को अग्नि में बिठा दिया था, तो प्रहलाद जी के संभाव को समझो, क्या वो विचलित हो गए इतनी टफ सिचुएशंस में भी, तब वो 5 साल के थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद जी। उनके पिताजी हिरण्यकश्यप कहते थे कि तुम मानो कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो होलिका को जो उनकी बुआ थी प्रहलाद जी महाराज की, तो उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वो अगर अग्नि में बैठ जाएगी तो वो कभी भस्म नहीं होगी, है ना। तो ब्रह्मा जी का ये वरदान, जब होलिका अग्नि में बैठती है ना अपनी गोदी में लेकर प्रहलाद जी को, तो वो तो ये सोचती है कि मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि उसको वरदान मिला होता है ब्रह्मा जी से कि वो कभी उसको अग्नि भस्म नहीं कर पाएगी। तो ब्रह्मा जी का वरदान प्रहलाद की डिटर्मिनेशन के आगे फेल हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो क्या आपने कभी सुना है कि बड़े बड़े देवताओं का वरदान भी फेल हो जाए, है ना। तो इस केस में हुआ देखो, है ना। तो भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति की शक्ति, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं संभाव। हमारे जीवन में क्या कष्ट है, 5 साल के बच्चे को देखो उसकी बुआ होलिका जिंदा जला रही है, कितने कर दुख है हमें और आपको। ज्यादातर हम कहाँ पे फंसे होते हैं, उसने मुझे ये कमेंट मार दिया, उसने मुझे ये कह दिया, ये है हमारे दुख। 4 प्रॉपर्टीज हैं और हमें और लेनी है ना, 4 गाड़ियां आगे गाड़ी खड़ी है लेकिन हमें एक और लेनी है, ये है हमारे दुख, ये है हमारा लेवल, है ना। हम चाहे अभी संभाव पर नहीं है, लेकिन हमें अपने आसपास के लोगों को जो इस लेवल पर हैं, ऐसे भक्तों को, ऐसे शुद्ध भक्तों को जो इस लेवल पर हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना है फ्रेंड्स, है ना। भगवान के शुद्ध भक्तों के गुणगान से फ्रेंड्स कृपा मिलती है, जो कृपा के पात्र होते हैं उनको अप्रिशिएट करने से भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे अभी हमने प्रहलाद जी महाराज का गुणगान किया, है ना, तो प्रहलाद जी महाराज की ब्लेसिंग्स आएंगी हमारे जीवन में, हमने उनको याद किया और प्रहलाद जी महाराज के आगे हमारी भक्ति जो हम अभी हम चले हैं इस रास्ते में, एक छोटा सा रेत का कण भी नहीं है फ्रेंड्स, ये हाल है हमारे, इतने बुरे हाल है। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में तो उलझे हुए हैं, इन बातों से नहीं हम निकलते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है ना, अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, पहले हमें इन बातों से बाहर निकलना है कि मुझे उसने ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, ये सब बातें, ये सारा जो बातों का जंजाल है ना, ये हमारे अंदर स्टोर हुआ होता है। 10-10 साल पुरानी बातें हमारे अंदर स्टोर हुई होती है, और वो निकलती कैसे है? वो निकलती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेने से, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने से जब ज्ञान मिलता है हमें, है ना। तो भगवत गीता इस उम्मीद से मत पढ़ना कि अब मेरे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। भगवत गीता इसलिए पढ़ो ताकि हम भगवान से ये पूछें कि भगवान आप क्या चाहते हो कि हम कैसे बने। मुझे आपकी नजरों में अच्छा बनना, हमें आपको खुश करना, दुनियादारी को खुश नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच मोना जी। मैं रोज ऐसा बोलती हूँ कि आज का सत्संग हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बट रोज का ही होता है। आज के जो 2 वर्सेस आपने करवाए हैं उनसे मेरी ये लर्निंग बनी है कि जिस प्रकार सर्दी गर्मी का मौसम आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, ठीक उसी तरह सुख दुख भी है हमारी लाइफ में। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, आएगा ही। भागवत गीता के अनुसार सुख दुख केवल हमारे देखने का नजरिया है। होता यह है कि जब हमारी लाइफ में सुख होता है तो हम घमंडी हो जाते हैं, हम इंसानों को खुद पर गर्व हो जाता है कि हम हमारे आसपास कुछ नहीं देखते, केवल अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और एंजॉय करते हैं। और जब हमारी लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हम प्रभु को कोसना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया है, और दुखी रहने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी की भी नहीं सुनते, ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस अपनी जीवन को अपने प्रभु को अपने जीवन को अपने प्रभु को कोसने लगते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु श्री हरि की संतान हैं। हमारे परम पिता ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, उन्होंने हमें हमेशा हर सिचुएशन में समभाव से रहना सिखाया है। हम करते क्या है कि प्रभु की सीख भूल जाते हैं और अपने मनमाने ढंग से जीवन जीने लगते हैं। चाहे हमारे जीवन में जैसी भी स्थिति हो, हमें काम रहना है, बैलेंस रहना है, और हमें हर सिचुएशन को कामली हैंडल करना है। सुख हो दुख हो, ज्यादा खुश नहीं होना, ज्यादा दुखी नहीं होना। और ये सब तभी होता है जब हम भागवत गीता के ज्ञान को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भागवत गीता पढ़ने या सुनने के बाद हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, परंतु होगा ये कि हम उस सिचुएशन को बोल्डली कामली फेस कर सकेंगे। हमें हमेशा हमारी लाइफ को सत्संग साधना सेवा और सदाचार से जीना चाहिए। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज पूजा जी, ब्यूटीफुली आपने दोनों श्लोकों को अच्छे से रिवाइज कर दिया। और आप कह रहे हो ना कि रोज मैं कहती हूँ कि वही सेम बातें जो मुझे लाइफ में चल रही है वही आंसर मिल जाते हैं, है ना। तो भाई भगवत गीता पहले ही मैंने बताया है कि परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर बुक है, है ना। भगवान को तो पता है ना कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो भगवान की बातें जब हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हमें आंसर भी करेंगे ना। ये भगवत गीता मुझे क्यों पर्सनली बहुत पसंद है कि मैं तीसरी रीडिंग कर रही हूँ पर फिर भी मुझे लगता है मैं मतलब हर चीज नई लगती है मुझे। ऐसा नहीं लगता मुझे कि अच्छा ये मैंने पहले पढ़ा हुआ, उसको मतलब नेक्स्ट लेवल पे वो समझ आती है और उसको अच्छी तरह से समझ आने लग जाती है वो चीज, है ना। ऐसा लगता नहीं है कि मेरी तीसरी रीडिंग है, मतलब ऐसे पढ़ाने में, मतलब भगवान को तो पता ही है ना कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमें किस चीज की राइट नॉलेज चाहिए, है ना। तो भगवान हमें स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमसे बात करते हैं, डायरेक्ट वाणी है उनकी, है ना। अगर हम पढ़ेंगे सिंसियरिटी से चलेंगे तो हो ही नहीं सकता ना कि भगवान हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर ना दे, और वहीं से हमें आंसर मिलते और हमारी लाइफ बेटर होना शुरू हो जाती है अगर हम उनको समझे और उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जिए फिर, है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल। मोना जी हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही डिवाइन था, और आज के सत्संग से जो मेरी लर्निंग बनी है वो ये है, फर्स्ट कि भगवान जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, नथिंग इज गुड और बैड, ये सिर्फ हमारी सेल्फ परसेप्शंस हैं, जैसे कि अब हम शॉप पे अगर फॉर एग्जांपल सूट लेने जाते हैं तो उसमें एक ही डिजाइन में हर कलर के सूट हमें अवेलेबल होंगे, बट हम एक ही कलर चूज करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ये कलर अच्छा नहीं है, लेकिन कोई और कस्टमर आएगा तो वो वही मतलब दूसरा कलर जो हमने रिजेक्ट किया होगा वो चूज कर सकता है। तो ये सिर्फ हमारी अपने ओपिनियन, हमारी अपनी चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम गुड और बैड मतलब कोई भी चीज को सही या गलत ठहराते हैं। और सेकेंड श्लोक में भगवान जी हमें बता रहे हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज परमानेंट, जैसे सर्दी आती है उसके बाद गर्मी आती है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी सुख और दुख आते हैं। भगवान जी कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बना के रखनी है, अगर सुख आ रहा है तो उसमें हमें ज्यादा खुश नहीं होना है, प्राउड नहीं फील करना, अगर दुख आ रहा है तो उसमें हमें ज्यादा रोना, टेंशन वगैरह, स्ट्रेस फील नहीं करना, हमें स्टेबिलिटी बना के रखनी है, काम रहना है और दूसरों के पाथ की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, वो स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब करते रहेंगे, हमें नाम जप करते हुए अपनी लाइफ की ड्यूटीज जो हमें दी हुई है भगवान जी ने उसको निभाते रहना है और नाम जाप करते रहना है। और अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं कोई भी काम करती हूँ, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले हम जो भक्ति थी वही दो टाइम जोत या माथा टेकना वही हमारे लिए भक्ति थी, बट जब से हम भागवत गीता के स्टूडेंट बने हैं तो मेरा यही होता है कि मैं कोई भी काम करूं तो नाम जाप मेरा मन में चलता रहता है। तो उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बैटरी चार्ज रहती है और बहुत अच्छा काम फील होता है। ह्यूमन नेचर है तो कई बार हम डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं सिचुएशन में, बट फिर मोना दी आपकी बातें जो है वो रिमाइंड होती हैं, तो कुछ टाइम मतलब एक दो मिनट के लिए हम हो जाते हैं, लो फील हो जाता है, बट वो बातें रिमाइंड आती है कि हमने क्या सीखा मोना दी से। तो वही जैसे कि आपने कल मेरे को बताया बोला कि हमें रेगुलर रहना है, तो अगर हम इस भगवद गीता को मतलब रेगुलर नहीं रहेंगे तो वो चीजें हमारे माइंड से निकल जाएंगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार भगवद गीता हमने पढ़ ली तो हम ज्ञानी बन गए, हमें इस रास्ते पे भगवद गीता पढ़ते रहना है और अपना जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते रहना है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू कोमल जी, हम आपको इसलिए मिस कर रहे थे कि आप रिव्यू अच्छा देते थे, लेकिन इसलिए मैंने फिर आपकी टर्न लगा दी व्हाट्सएप पे कि आप व्हाट्सएप पे तो देखोगे और फिर आप बात करोगे, है ना। आपकी तीसरी रीडिंग है कोमल जी, दूसरी रीडिंग है?
मोना दी सेकंड रीडिंग है।
हाँ, सेकंड रीडिंग है ना, तो सेकंड रीडिंग में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि थर्ड रीडिंग में आप थोड़ा सा मतलब बीच बीच में आ रहे हो, बीच में नहीं आ रहे हो, है ना, अटेंटिव नहीं हो। तो अगर हम अटेंटिव नहीं होंगे, फ्रेंड्स रेगुलर नहीं होंगे, तो 100% चांसेस है, 1% चांस नहीं है कि हम पीछे हो जाएंगे। जितना हम आगे आए हैं ना, जो चीजें हम समझ रहे हैं वो सब हमारा जीरो हो जाएगा, और ये फॉर श्योर है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सीख लिया और हम एक धर्मात्मा हो गए और हम बस सब कुछ आ गया हमें, ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। तो आप देखो ना, जो जो मतलब अच्छे लोग हैं तो वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं, आपने देखा उनकी हैबिट होती है ना। मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते सुना है कि मैं रात को लेट सोता हूँ क्योंकि मेरे को 3-4 घंटे अपने साथ बुक्स के साथ स्पेंड करने होते हैं, है ना। मतलब वो अभी वो 60 ईयर्स के हैं या 65 ईयर्स के हैं, तो उनको क्या लगता है अभी मुझे कुछ नहीं आता, और हमें क्या लगता है जो नए नए चलते हैं, लगता है हमें तो बस सब कुछ, एक बार भगवद गीता पढ़ ली अब क्या जरूरत है। अब कई लोग मैंने ऐसे है मैंने सुना है कि क्या जरूरत है मुझे भगवद गीता पढ़ने की, यार पढ़ तो लिया, एक बार दो बार पढ़ तो ली, लेकिन क्या हम भूलते नहीं है चीजों को, है ना। क्या हम खाना खाना भूलते हैं, क्या हम ब्रश करना भूलते हैं, है ना। तो हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हमें ये वाला सत्संग मैं हमेशा रहूं, आप ये मत सोचना, मैं चाहती हूँ कि आप बेशक सत्संग छोड़ दो, लेकिन कोई भी, लेकिन भगवत गीता या अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना हमेशा अपने लाइफ का पार्ट बना लो कि मुझे दो श्लोक, तीन श्लोक पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। अब ये सत्संग मुझे भी क्यों इतना अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस होती है, मुझे पढ़ना है रोज, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने की बात नहीं है, मुझे खुद पढ़ना, मुझे खुद इन चीजों को मथना, इन चीजों को समझना बार 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 बार। अभी मैं वही टाइम लेती हूँ, 3-4 घंटे अपने पे लगाती हूँ कि मुझे आज ये श्लोक करने हैं, तो पहले मुझे खुद से समझने, है ना। तो ये चीजें फ्रेंड्स समझना और बार बार नित्य निरंतर करना बहुत जरूरी है, है ना। और बिल्कुल डाउन हम हो जाते हैं, मैं भी होती हूँ, सब होते होंगे मुझे लगता है। देखो अर्जुन कितना वीर था, कितना वीर व्यक्ति था, तो अर्जुन के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्जुन देखो डिप्रेस हो गए फर्स्ट चैप्टर में, कहां वो इतने सालों से तैयारियां कर रहे थे, है ना। उन्होंने थोड़ी कि एक साल तैयारी की कि चलो मैं तो लड़ ही लूंगा, भाई मेरे जैसा वीर कहाँ है। नित्य निरंतर 13 ईयर्स तक उन्होंने इस युद्ध की तैयारी की थी, तो वो फर्स्ट चैप्टर में आते आते वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो हम तो क्या ही है, है ना, हम तो एक छोटे से अदने से एक प्रकृति का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा एक इंसान है, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना है, डाउन हो जाते हैं तो फिर से वापस समय उठना है, है ना। एक बार सत्संग नहीं अटेंड किया, चलो एक महीना नहीं सत्संग, देखो मेरे 2 महीने का मेरा गैप हो गया हुआ था, है ना, लेकिन मेरे अंदर से एक मतलब एक कशिश थी कि मुझे नहीं, मुझे जाना है, मैं कब घर जाऊंगी और कब मैं सत्संग शुरू करूंगी, कब मैं पढ़ूंगी अपने, मतलब मैं वहां पे ऐसा फंस गई थी। वही बात है, माया इतना अटैक करती है ना कि मुझे वहां पे मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन घर आते के अंदर से मेरे को कशिश थी कि नहीं, मेरे को जाते ही मुझे करना है ये सब चीजें, मुझे वापस से इस दुनियादारी में नहीं घुसना है ना, करना तो है वो ही ना, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, है ना। वो करेंगे कैसे जब हम नित्य निरंतर अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करेंगे। जब डाउन फील होते भी हैं तो हम वापस उसको आने की कोशिश करते हैं। डाउन फील सभी करते हैं फ्रेंड्स, मैं भी करती हूँ, है ना, बड़े बड़े संत लोग भी करते होंगे, लेकिन वो करते हैं क्या, वो अपने साधना पे वर्क करते हैं, है ना। तो हमें भी बस उन्हीं चीजों को समझना है, साधना पे वर्क करना है, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, हम भी फिर डाउन फील कम करेंगे और नित्य निरंतर हमें भी यही चीजें अंदर घुसती रहेंगी, क्योंकि दुनियादारी के इस भाग दौड़ में फ्रेंड्स हम ये सब चीजें भूलते हैं। कितने लोग हमारे से ये सब बातें करते हैं, आप ये बताओ कितने लोग होंगे हमारे आसपास, जो भी हमारा 10-15 लोगों का जो सर्कल होता है ना, वो दुनियादारी में उलझा हुआ है हमसे भी ज्यादा कहीं पे, क्योंकि उन्होंने एक बार भी भगवद गीता नहीं पढ़ी है। जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो उनकी बातें अलग सी लगती है ना, ऐसा लगता है ये ऐसे बात भी कैसे कर रहा है, मतलब कैसे बातें हैं इनकी, पूरी लिटरली मुझे उसने ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया है उनका, है ना। तो अगर हमने ये सब छोड़ा अपनी लाइफ को, ये सोचा यार मैं डाउन होगी या मेरे को मैं कहीं बिजी होगी, ठीक है मैं बिजी होगी 10-15 दिन, वापस आ जाओ, है ना। या मन में अंदर दृढ़ विश्वास रखो ना, दृढ़ निश्चय रखो कि नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे करना है वो चीजें जिन चीजों से मेरी लाइफ बेटर हुई है, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच कोमल जी। तो ठीक है फिर हम भजन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। पूजा जी आज आपकी भजन की टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरि बोल।
हरि हरि बोल। जय श्री बांके बिहारी लाल की। चलो रे मन वृंदावन धाम, रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली। राधे 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 राधे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे, कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे, तेरे पूरन हो सब काम, तेरे पूरन हो सब काम, रटेंगे वहां राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, महलों की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलों की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, क्यों भटके खामा खाम, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, तू जप ले आठो याम, तू जप ले आठो याम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांबल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, उनके कामल काली। जय श्री राधे,
जय श्री कृष्णा। बहुत प्यारा भजन गाया आपने, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप प्रेयर्स कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधे कृष्ण हरि बोल।